ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्प विकसित और विकासशील देशों ग्लोबल साउथ की स्थिति पर बल देते हुए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भुखमरी और निर्धनता के खिलाफ लड़ाई और सामाजिक समावेशन पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने वैश्विक संघर्षों का ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए ब्राजील की सराहना भी की। उन्होंने भारत की G20 विषय एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की टिकाऊ प्रासंगिकता की पुष्टि की। श्री मोदी ने समावेशी वैश्विक शासन सुधारों का आह्वान किया। भारत की घरेलू उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में 25 करोड़ से अधिक लोगों को निर्धनता से उबारा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता सहित वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत के योगदान का भी उल्लेख किया। G20 शिखर सम्मेलन के आज दूसरे दिन प्रतिभागी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में पहले दिन भूख और गरीबी पर वैश्विक गठबंधन और वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार पर सफल सत्र आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई द्विपक्षीय सम्मेलनों में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे पुर्तगाल इंडोनेशिया फ्रांस इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। दिन का प्रमुख आकर्षण 2024 G20 शिखर सम्मेलन के लिए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र रहा, जिसमें सतत विकास जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्वास्थ्य आर्थिक सुधार और बहुपक्षवाद के भविष्य सहित कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरे दिन भी सम्मेलन सदस्य दो सत्रों में भाग लेंगे। पहला सत्र सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण और दूसरा सत्र डिजिटल बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा। पीएम मोदी सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण के सत्र को संबोधित भी करेंगे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अगले साल की शुरुआत में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के बारे में बातचीत फिर शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद कहा कि भारत के साथ एक नया व्यापार समझौता इंग्लैंड में नौकरियों का सृजन करने में मदद करेगा और देश भर में विकास और अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। झारखंड और महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। झारखंड में दूसरे चरण में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। सुरक्षा कारणों से झारखंड में 31 मतदान केंद्रों पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। महाराष्ट्र में एक ही चरण में सभी 288 सीटों के लिए भी मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। दोनों राज्यों में मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी कल ही वोट डाले जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो तथा राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन समारोह में गृहमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में देश ने संघर्ष प्रभावित अधिकतर क्षेत्रों में हिंसा में कमी लाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। श्री शाह ने कहा कि कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग की अनुमति देने का आग्रह किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर वायु प्रदूषण पर आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। नई दिल्ली में श्री राय ने कहा कि विशेषज्ञों से परामर्श किया गया और अब समय आ गया है कि दिल्ली NCR में धुंध को दूर करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कृत्रिम बारिश शुरू की जाए। बिहार में महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मैच में शाम 4:45 पर भारत का सामना जापान से होगा। इस समय पहले सेमीफाइनल में चीन का मुकाबला मलेशिया से जारी है। अंतिम समाचार मिलने तक चीन ने 3-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।